أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين قرآن مجید کے 29ویں جزء میں ہم نے سورة المدثر تک تمام کر لیا تھا. آغاز کر رہے ہیں سورة القیامہ کی ابتدا سے ترجمہ اور مختصر وضاحت. بنام خدا رحمان رحیم, قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی. دو, قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. دو قسمیں کھائی ہیں اس سورہ مبارکہ جس کا نام قیامت ہے یا القیامہ اس کی ابتدا میں. ایک قیامت کے دن کی قسم ہے اور ایک انسان کے اندر سے آنے والی اس آواز کی قسم ہے کہ جو آواز انسان کو ملامت کرتی ہے, برا بھلا کہتی ہے. کب؟ کہ جب انسان کوئی غلط کام, کوئی جرم, کوئی گناہ کرتا ہے. آپ توجہ فرمائیے کہ یہ آواز ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے, چاہے کوئی مسلمان ہو یا کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہو یا کسی دین سے بھی تعلق نہ رکھتا ہو, کوئی پیغام اس تک نہ پہنچا ہو. یہ برے کام پر ملامت کرنے والی آواز, جس کو ہم ضمیر کی آواز کا نام دیتے ہیں, یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ انسان کے جو اپنی نفس پرستی میں اور اپنے جائز ناجائز مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اس آواز پر کان نہ دھریں اور نہ رکیں برے کاموں سے, تو یہ آواز کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن یہ آواز موجود رہتی ہے انسان کے اندر. یہ اللہ نے گویا کہ ہر انسان کے اندر اس کی خلقت ایسی کی ہے کہ اس کے اندر رکھ دی. ان دو قسموں کا آپس میں رابطہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے, قیامت کے دن کی قسم اور اس آواز کی قسم کے جو انسان کے اندر سے اسے ملامت کرتی ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں تو انسان اگر غور کرے کہ یہ جو میں غلط کام کرتا ہوں تو میرے اندر سے ایک آواز, ایک احساس مجھے ملامت کرتا ہے, میری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. اگر ہم اس آواز پہ غور کریں تو خود اس آواز کا موجود ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ کام صحیح ہیں اور کچھ کام غلط ہیں. اب جب کچھ کام صحیح ہیں اور کچھ کام غلط ہیں, تو غلط کام کرنے والے اور صحیح کام کرنے والے یہ دونوں ایک جیسا انجام رکھتے ہیں, یہ دونوں ایک جیسا انجام نہیں رکھتے. خود اس آواز کا انسان کے اندر سے آنا انسان کو بتا رہا ہے کہ اچھائی اور برائی اس کا کچھ حساب کتاب ہے. اور جس نے تیرے اندر یہ آواز رکھی ہے, جو اس آواز کا بنانے والا, تو نے خود نہیں رکھی, اس لیے کہ تو غلط کام کرنا چاہتا ہے لیکن یہ تیری مرضی کے خلاف تیری ملامت کرتی ہے, تیرے کام پر تیری ملامت کرتی ہے, لہذا تو نے خود تو یہ نہیں رکھی. تو جس نے یہ آواز رکھی ہے اس کا پیغام سن کہ جیسے یہ چھوٹی سی قیامت اندر سے یہ آواز تیرا حساب کتاب کرتی ہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے, ایک بڑی قیامت بھی آنے والی ہے کہ جس دن تیری ملامت کی جائے گی, لیکن صرف ملامت نہیں کی جائے گی, تیرے برے اعمال کے بدلے میں تجھے اس کا پورا پورا عذاب اور سزا بھی تجھے بھگتنا ہوگی. پس قیامت کے دن میں اور انسان کے اندر سے آنے والی آواز میں ایک رابطہ ہے. یہ آواز گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس آواز کو خلق کیا ہے وہ اس قیامت کے دن انسان سے حساب کتاب بھی لے گا. قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی, कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। और हम आपको बता चुके कि अल्लाह जब किसी चीज़ की कसम खाता है, जब किसी चीज़ की कसम खाई जाती है, तो जिस चीज़ की कसम खाई जा रही होती है उसको गवाह बनाया जा रहा होता है अपनी बात की सदाकत पर। तीन, इन दोनों कसमों का जवाब ये है कि कयामत तो हतमन आ के रहेगी, इतनी हकीकत है कि मैं उसकी, अल्लाह उसकी कसम खा रहा है। और फिर उसकी ताईद में मलामत करने वाले नफ्स की आवाज की अल्लाह ताला कसम खा रहा है, यानी उसे गवाह बना रहा है, यानी इंसान से कह रहा है कि इस आवाज को तो देख के तेरे अंदर किसने रख दी, जिसने ये रखी है वही तुझे बता रहा है कि तेरा हिसाब किताब हो कर रहेगा। तीन, अब इसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला सवाल के अंदाज में ये समझाना चाहता है कि इंसान कयामत को झुठलाता क्यों है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे, दोबारा जब वो रेजा रेजा हो जाएंगी हम उसकी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं करेंगे। चार, हाँ क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों के पोर बनाने पर भी, ठीक ठीक बनाने पर भी कुदरत रखते हैं, कादिर हैं। तुम्हारी हड्डियां तो दूर की बात है, पहली दफ़ा तुम्हारी हड्डियां किससे बनाई थी, और हड्डियां तो ज़रा बड़ी चीज़ है। तुम्हारी उंगलियों के पोर, ये जिन्हें हम फिंगर प्रिंट्स कहते हैं, और हम जानते हैं कि हर इंसान के दूसरे इंसान से अलग होते हैं, और किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए उसके फिंगर प्रिंट्स के ज़रिए भी मदद ली जाती है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हड्डियां तो दूर की बात, हम तुम्हारे उंगलियों के पोर भी दोबारा उसी तरह बनाने पर कादिर हैं। इस बात की दलील क्या है, इसलिए कि पहली बार भी तो उसी अल्लाह ने बनाए, उसी की खिलकत का शाहकार है तू ए इंसान। तो जो पहली बार तुझे बना सकता है, तो ये सवाल मत कर कि हड्डियों को कौन जमा करेगा, हड्डियां नहीं, क़यामत के दिन तुझे ऐसी शक्ल व सूरत में निकालेंगे कि तू अपने आप को अच्छी तरह पहचान रहा होगा, हत्ता कि तेरे उंगलियों के पोर भी हम उसी तरह बनाने की कुदरत रखते हैं। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है बल्कि, यानी क़यामत को जो तुम्हारा झुठलाना है, ये तो एक अपने आप को झूठी तलकीन करना है, असल में तुम कुछ और करना चाहते हो जिसकी वजह से क़यामत को झुठलाते हो तुम, ताकि अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे लो कि मैं कर भी लूंगा तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। और वो क्या है, बल्कि इंसान चाहता है कि अपने आगे यानी आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में फजूर करता रहे, फिस्क व फजूर बुराइयां करता रहे। अब इंसान जब बुराई करना चाहता है जो उसको मज़ेदार लग रही होती है, तो वो देखता है कि ये क़यामत हिसाब किताब का तसव्वुर उस काम, उस बुराई करने में रुकावट है, तो ये तरह तरह के शकूक व शुबहात के ज़रिए उस क़यामत के तसव्वुर को अपने जहन से झुटलाने की, झटकने की कोशिश करता है, वरना उसके वो जो गुनाह की लज्जत है उस रंग में भंग पड़ जाएगी, उसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लिहाजा इंसान अपने आप को तसल्ली देता है कि क़यामत नहीं आनी। यहाँ पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, दो किस्म के अफराद हैं जो क़यामत के बारे में गुमराही का शिकार हैं। एक वो अफराद कि जो क़यामत को मानते ही नहीं, कहते हैं हमारी यही ज़िंदगी है, मर जाएंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं होना, ये क़यामत को झुठलाते हैं। और एक दूसरे, ये तो हमारे में से, यानी कम अज़ कम ज़ाहरी तौर पर कोई भी मुसलमानों में से, और दीन पर, किसी भी दीन पर जो कहते हैं कि हम किसी न किसी दीन के कायल हैं, उनमें से तो कोई भी अल-ज़ाहिर, दिल में जो उसको छोड़े, ज़ाहरी तौर पर कोई नहीं कहता कि हम क़यामत का इनकार करते हैं। लेकिन दीनदार लोगों में जो शैतान ने खेल खेला है, वो ये कि ऐसी बातें दीन की नाम पर और मुकद्दस हस्तियों के नाम पर, ऐसी बातें दीनदारों के जहन में डाल दी हैं कि जो खिलाफ है कुरान मजीद है, और उसकी वजह से वो क्या समझते हैं, वो कहते हैं क़यामत तो आनी है लेकिन हम हतमन बख्शे जाएंगे। अब ये जो एहसास है, अगर आप इस पर गौर करें, वो जो कहता है क़यामत आनी ही नहीं, और ये जो कहता है क़यामत आनी है लेकिन मुझे कुछ नहीं कहेगी, मैं तो हतमन बच जाऊंगा, जो इन दोनों का अमली तौर पर नतीजा है वो एक जैसा है, वो खराबियां करेगा। क्यों? इसलिए कि वो कहता है क्यामत तो आनी नहीं है। और ये खराबियां करेगा क्योंकि इसके जहन में ये डाल दिया गया है कि तेरा सब कुछ माफ है, तू कुछ काम कर ले, तेरे अगले पिछले सब माफ है, तू बख्शा हुआ है। वो मिजाज और वो फिक्र, वो अकीदा के जो यहूदियों का, बनी इसराइल का और मसीहियों का, जो उन्होंने अपने अपने दीन की तहरीफ करके, वरना हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो वही पैगाम लाए थे जो रसूलुल्लाह लाए, इस्लाम है सबका दीन, लेकिन उन्होंने तहरीफ की और समझते थे हमारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। हम हतमन जन्नत में जाएंगे, अगर थोड़ा सा जहन्नम में चले भी गए तो वापस जन्नत में आ जाएंगे। अब ये जो अकीदा है कि क़यामत आएगी लेकिन हम बच जाएंगे, ये भी अगर गुनाह करना चाहे इसको भी तसल्ली दे दी गई है कि तूने जन्नत में चले जाना है, लिहाजा ये भी हिसाब किताब का खौफ इसके दिल से निकल गया। और वो जो बिल्कुल क़यामत को झुटला रहा है उसके जहन से भी क़यामत का खौफ निकाल दिया गया है, उसका भी जो जी में आए वो करता रहे। बस ये कहना कि क़यामत आएगी ही नहीं, या ये इस बात का कायल हो जाना कि आएगी तो सही लेकिन मैं या मेरा ग्रुप, मेरी पार्टी, मेरा मसलक, ये एक ऐसा अल्लाह का फेवरेट ग्रुप है कि जिसको अल्लाह ने हतमन माफ़ कर देना है, ये खिलाफ कुरान है। क्योंकि कुरान ने मुतअद्दिद जगहों पर बयान फरमाया है कि क़यामत के दिन जो लोग जन्नत में जाएंगे ये वो लोग होंगे जो दुनिया में क़यामत से डरते रहते थे, अल्लाह के खौफ से कांपते रहते थे, और ये खौफ उन्हें गुनाह करने से रोके रखता था, उनके अंदर गुनाह करने की जुर्रत पैदा नहीं होती थी। आयत नंबर 5 दोबारा तकरार करते हैं, बल्कि इंसान चाहता है कि मुस्तकबिल में यानी बुराई करता जाए, रुकावट कोई ना हो। लिहाजा आप देखेंगे कि वो शख्स के जो खालिस दीन की का कानून बयान करता है, और वो शख्स के जो तहरीफ करके शॉर्टकट बताता है जन्नत में जाने के, जो आम आवाम है, कुरान से दूर आवाम, उनको कौन सा पसंद आता है? उनको शॉर्टकट बताने वाला और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बात करने वाला जिसका उनको ज़्यादा मज़ा है, वो आलिम या वो खतीब या जो भी आप नाम रख लें दीन बताने वाला, वो उनको ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन जो हक की तलाश की, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी होती है और जिन्होंने अल्लाह की किताब कुरान को देखा होता है और बाकी चीज़ों को कुरान की आयात के नूर में देखते हैं, उनको पहचान हो जाती है कि हक कौन बता रहा है, और तहरीफ करके कुरान की बातें और हैं और इसकी बातें और हैं, वो ऐसे शख्स को पहचान लेते हैं। और उसका रास्ता, जैसा कि हम बार बार अर्ज़ करते हैं, अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अहले बैत अतहार के बयान के मुताबिक उसका बुनियादी तरीन रास्ता ता क़यामत कुरान मजीद को समझना और उसके अंदर गौर व फिक्र करना है। हक़ को इंसान कुरान से पहचान ले और फिर अपने मुआशरे को देखे तो उसको फिर असली चेहरे लोगों के दिखाई देंगे, मेकअप और नकाब उसको धोखा नहीं दे सकेंगे। बल्कि इंसान चाहता है कि मुस्तकबिल में बुराई करता जाए। 6 वो सवाल करता है क़यामत का दिन कब आएगा। ये सवाल जानने के लिए नहीं, जैसे बार बार हम कह चुके, ये सवाल झुटलाने के लिए, इतने अरसे से सुनते आ रहे कब आएगी ये, यानी नहीं आएगी। और ये जुमला हमने मुसलमानों के मुंह से कई बार सुन चुके, क़यामत कब आएगी। 7 अब यहां से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जब वो आएगा तो क्या सूरत हाल होगी, क्या मनाजिर होंगे, वो बयान फरमा रहा है। तो जब आंखें चुंधिया जाएंगी, अगर इंसान की आंखों के सामने बहुत ही तेज किस्म की रोशनी अचानक चमके तो एक दफा इंसान की आंखें देखने की सलाहियत को खो देती हैं, चुंधिया जाती हैं या पथरा जाती है, उसे कुछ वो रोशनी हट भी जाए तो काफ़ी देर तक उसकी आंखें देखने के काबिल नहीं होती। ये इसका इन्हिसार इस पर है, इस पर डिपेंड करता है कि वो जो चमक थी रोशनी की वो कितनी शदीद थी, कितनी کتنا اثر ڈالتی ہے انسان کی آنکھوں پر. تو قیامت بھی جب آئے گی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گویا کہ ایسی زوردار بجلی چمکے گی اور بہت سارے حادثات پیش آئیں گے. ایک حادثہ یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جب آنکھیں پتھرا جائیں گی, آٹھ, اور چاند گہنا جائے گا. چاند کو گہن, جسے ہم گرہن بھی کہتے ہیں, ایکلپس, اور یہاں مراد یہ کہ چاند کا نور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. چونکہ سورج کو ہی اللہ تعالیٰ اس وقت لپیٹ دے گا, اس کی روشنی ختم ہو جائے گی, تو چاند تو ویسے بھی وہاں سے ادھار لیتا ہے. چاند اور چاند بے نور ہو جائے گا. نو, اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. جمع کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا. پہلے قرآن مجید میں گزر چکا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے تم کوئی چیز لکھ کر اسے, اس کاغذ کو, اس چمڑے کو لپیٹ دیتے ہو. پرانے زمانے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ خطوط جو تھے لکھے جاتے تھے, اس کے بعد ان کو لپیٹ دیا جاتا تھا. اب جب یہ سب حادثے ہو چکیں گے تو وہ انسان کہ جو اس وقت موجود ہوں گے, یا یہ کہ دوبارہ مر کے سارے باہر نکل آئیں گے, ان کی زبانوں سے کیا کیا باتیں نکلیں گی اس بدحواسی میں, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ایک بات یہاں پر یہ بیان فرمائی ہے کہ آیت نمبر 10 میں, تو اس دن انسان کہے گا کہاں ہے فرار کی جگہ, یعنی کہاں بھاگوں, چیخے گا, پکارے گا کہ کہیں ایسی جگہ مل جائے کہ اس قیامت کے حساب کتاب سے میں فرار کر سکوں. این المفر, مفر یعنی فرار کی جگہ. تو اس دن انسان کہے گا فرار کر کے کہاں جاؤں, کہاں ہے فرار کی جگہ. 11, نہیں, کلا, ہرگز نہیں, اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے, صرف ایک پناہ گاہ, اور وہ کون سی ہے؟ آیت نمبر 12, تیرے رب ہی کی طرف اس روز ٹھکانہ ہے, اور کہیں نہیں جا سکتا, تیرے رب کے پاس ہی تجھے جا کر رکنا ہے, وہی اگر پناہ دے تو دے سکتا ہے, اور تیرے لیے پناہ گاہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس روز ٹھکانہ تو صرف تیرے رب کے پاس ہوگا. 13, اس دن انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو وہ آگے بھیج چکا اور جو پیچھے چھوڑ آیا ہوگا. انسان جب تک زندہ ہوتا ہے اپنے اعمال کرتا ہے, آگے بھیج رہا ہوتا ہے, اور جب وہ مر جاتا ہے تو کچھ اس کے اعمال, اس کی باتیں, چاہے اس نے باتیں کی ہوں, چاہے کوئی کام کر دیا ہو, جو اس کے بعد بھی اس کے, اگر نیکی ہے تو نیکی کا اکاؤنٹ, اگر برائی ہے تو برائی کا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے. اگر دنیا دار اور اولاد, دنیا پرست اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو وہ بھی اس کو پیچھے سے اس کو بتایا جائے گا کہ تیرے بعد جو تو نے اپنی اولاد بے تربیت دنیا دار چھوڑی تھی, ان کو جو تو جائیدادیں دے کر آیا تھا اور ان کو جو تو وسائل دے کر آیا تھا, انہوں نے جو جو گناہ کیے ہیں, تیرے کھاتے میں بھی ان گناہوں کو لکھا گیا, اور جو نیک اولاد کو تربیت کر کے آئے ہوں گے انہیں بتایا جائے گا کہ جو تم اولاد اچھی چھوڑ کر آئے تھے, ان کو جو کچھ دے کر آئے تھے, انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو, اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی, اللہ کی اطاعت کی ہے, تو یہ تمہاری نیکیاں جو تم نے اپنے ہاتھ سے نہیں کی, جو ہاتھ سے کی ہیں وہ بھی بتائی جائیں گی, اچھائیاں بھی برائیاں بھی, اور جو ہاتھ سے نہیں کی لیکن پیچھے چھوڑ کر آیا تھا وہ بھی, چاہے اچھائیاں تھیں چاہے برائیاں, انسان کو اس کی خبر دی جائے گی. 14, بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے, یہ لفظ آیا ہے اپنے نفس پر, بصیرہ, بصیر کہتے ہیں جو بہت اچھی بصیرت رکھتا ہے, گہرائی تک سمجھتا ہے. یعنی انسان کو گویا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ بغیر بتائے بھی اس دن انسان کو بڑا اچھی طرح پتہ ہوگا کیا کمائیاں کر کے آیا. آج دنیا میں بھی انسان دوسروں کے سامنے جو بھی اپنا چہرہ پیش کرتا رہے, لیکن اگر اپنے گریبان میں جھانکے, اپنے اندر جا کر اگر انسان دیکھے, توجہ کرے, تو سب سے زیادہ بہتر انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہوتا ہے, دنیا والے نہ بھی جانے, اور پھر انسان سے بھی بڑھ کر اس کا رب उसके अंदर को जानता होता है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरग से भी उसके ज्यादा करीब है, अक़रब करीब तर है। तो इंसान, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बल्कि इंसान अपने आप से खूब आगाह है, 15, अगरचे वो बहाने उंडेलता है, यानी खराबी करने के लिए उज्र तलाश करके लाता है। उज्र कौन कौन से होते हैं? एक दफा कर लूं फिर तौबा कर लूंगा, अभी तो मेरी जवानी है इंशाल्लाह बाद में तौबा कर लूंगा। गाफिल इस बात से कि ये ख्यालात उसको शैतान ही डाल रहा होता है, क्योंकि शैतान को पता है जितना ये गुनाह करता जाएगा उतना इसकी वापसी मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि ये आदी हो जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा गुनाह का, गुनाह की लज्जत इसे फिर गुनाह छोड़ने नहीं देगी। तो इंसान जानता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं लेकिन बहाने लेकर आता है, बहाने यहाँ पे लफ्ज आया उंडेलता है, यानी इतने ढेरों बहाने बना लेता है ताकि अपने उस गलत काम करने को अपने लिए, अब खुद फरेबी अपने आप को गलत तरीके से जस्टिफाई कर सके कि मैं ये काम कर लूँ। कभी कहता है अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा, कर लो, और इस तरह गुनाह की जुरत पैदा होती है। आयत नंबर 16 से लेकर, तवज्जो फरमाइए, आयत नंबर 19 तक जो बात की गई है उसे, ये चंद जुमले हैं जिनको एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जुमले मुतरिज़ा। जुमले मुतरिज़ा क्या होता है, तवज्जो फरमाइए। आयत नंबर 15 से बात कनेक्टेड कहाँ से है, आयत नंबर 20 से, यानी 20 से बात दोबारा जारी है, कंटिन्यू हो रही है। ये दरमियान में जो आयत नंबर 16 से 19 तक है ये मरबूत हैं भी बात से, लेकिन उस तरह मरबूत नहीं है, एक अलग बात बीच में की जा रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक उस्ताद है, वो बच्चों को सबक लिखा रहा है और लिखाते लिखाते रुक कर उनसे कहता है कि तवज्जो के साथ लिखो, या जो तवज्जो के साथ नहीं लिख रहे वो गलती करेंगे, और उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करता है जो वो डिक्टेशन इमला लिखवा रहा होता है। तो ये जो बीच में बात की जाती है इसको कहा जाता है जुमला मुतरिज़ा। तो वो मुतरिज़ा क्या है, आयत नंबर 16 से लेकर 20 तक है, और उसके बाद आयत नंबर 19 तक है, और उसके बाद 20 से बात कंटिन्यू होती है वही के जो आयत नंबर 15 पर रुकी थी। अब आयत नंबर 16 से लेकर 20 पर तवज्जो फरमाइए। आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ए नबी आप वही को जल्दी, वही के बारे में जल्दी करने के लिए अपनी जुबान को हरकत न दीजिए। इसका पस मंजर क्या है कि जब वही का फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लेकर रसूलुल्लाह के पास आता था, नाजिल होता था, और वो अल्लाह का पैगाम रसूलुल्लाह को सुना रहा होता था, तो रसूलुल्लाह अपनी शिद्दत इश्क और महबूबियत और इश्तियाक की वजह से कबल इसके कि वही तमाम हो उसको अपनी ज़ुबान से जल्दी जल्दी रिपीट करने की कोशिश करते थे कि कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए, सारा मुझे याद हो जाए, कुछ मेरे कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो मुझसे रह जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को इन आयात में तसल्ली दिलवाई है और ज़मानत दी है कि आप जल्दी जल्दी अपनी ज़ुबान को हरकत न दिया करेंगे। इस क़ुरान का पढ़ना और आपको पढ़ाना और इसका जमा करना और इसका बयान करना वो हमारे ज़िम्मे है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है। लिहाजा आप जब वही का फ़रिश्ता आता है आप आराम से तसल्ली के साथ उसको सुने और उसके साथ साथ अपनी ज़ुबान को जल्दी जल्दी हरकत न दिया करें। आयत नंबर 16 को हम दोबारा पढ़ते हैं, ए नबी आप वही को हिफ्स करने के लिए जल्दी जल्दी अपनी ज़ुबान को हरकत न दें। 17, क्यों न दें, इसलिए कि यकीनन इसका जमा करना, यानी इस क़ुरान का जमा करना और इसका पढ़वाना आपको यकीनन हमारे जिम्मे है, यानी अल्लाह के जिम्मे है। 18, तो जब हम इसे पढ़ चुके, हम इसे पढ़ चुके, यानी मुराद वही कि जब वो फरिश्ता आपको सुना चुके, फरिश्ता अपने पास से तो कुछ नहीं कह रहा, वो तो अल्लाह ही का पैगाम सुना रहा है, एक वास्ता है। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे कि जब हम उसे पढ़ चुके तो फिर आप उसी तरह पढ़ा करें, यानी जैसे पढ़ा गया है आपको बताया गया, फिर एक दफ़ा पूरा सुन के आप उसी तरह पढ़ा करें। 19, फिर उसके बाद इसका बयान भी हमारे जिम्मे है, इसकी वजाहत हमारे जिम्मे है। इससे ये भी मुराद हो सकती है कि कुछ आयात जिसमें एक बात की तरफ इशारा है और आयात आकर उसका मजीद बयान कर देंगी, जैसा कि खुद मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कुरान की आयात एक दूसरे की तफसीर करती हैं, एक दूसरे को वाज़ह कर देती हैं। ये मुराद भी हो सकती है और ये मुराद भी हो सकती है कि वो चीज़ें के जो हम कुरान में ज़िक्र कर रहे हैं उनकी तफसीलात भी हम आपको बता देंगे ताकि आप उम्मत को बता दें। बस रसूलुल्लाह पर आने वाली अल्लाह की तरफ से वही इस बात की बुनियाद पर दो किस्म की हो जाएगी, एक वो जिसका नाम कुरान है और एक वो कि जो रसूलुल्लाह ने मिसाल के तौर पर नमाज, तवज्जो फरमाए, नमाज का पूरा पढ़ने का तरीका तकबीरतुल एहराम होगी पहले, फिर क़याम होगा, फिर रुकू होगा, फिर उठना है, फिर दोबारा दो सजदे करने हैं, फिर मसलन दूसरी रकात में तशहुद पढ़ना है, और ये सारी जुज़ियात ये कुरान में बयान नहीं की गई। लेकिन ये किसने बयान की है? अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है ऐसी वही के ज़रिए कि जो कुरान का हिस्सा नहीं है, और वो हमें हदीस रसूल से, अलबत्ता इस कैद के साथ कि सही हदीस रसूल, सही और रसूलुल्लाह के बाद जो मकतब अहले बैत के मुताबिक जो हमारे आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह ही के फरामीन को आगे बयान किया है उससे हमें पता चलता है, और उन्हीं के बताए हुए फार्मूले के मुताबिक के खिलाफ कुरान उस हदीस को, जिसको हदीस का नाम दिया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। कुरान से अगर मुखालफत में है तो वो हदीस नहीं हो सकती। फिर उसकी वजाहत भी हमारे जिम्मे है। ये आयत नंबर 19 यहाँ पे रुक जाती है, गोया बीच में उस जो पीछे बात हो रही थी आयत नंबर 15 तक उसको रोक कर ये रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई कि आप जल्दी जल्दी अपनी ज़ुबान को हरकत न दिया करें, हम इस कुरान को जमा भी करेंगे, इस कुरान की कोई चीज़ नहीं रहेगी मगर ये कि हम आपको याद करवा देंगे, जमा कर देंगे, बयान कर देंगे। ये हमारा ज़िम्मा है, और ये एक और ताकीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान का नाजिल करने वाला भी खुद है और इसकी हिफाजत करने वाला भी खुद है। आयत नंबर 20 से अब आप ज़रा तवज्जो को ले जाएं, क्या बात हुई थी आयत नंबर 14 और 15 में, बल्कि इंसान अपने आप से खूब आगाह है, 15, खा वो माजरतें पेश करता रहे, बहाने लेकर आए खराबियां करने के लिए, जितने पेश करे अपने आप को जानता है कि मैंने जानबूझकर खराबी की है या मसलन गलती से की है, मुझसे क्या हुआ है। आयत नंबर 20, हरगिज़ नहीं, अब ये हरगिज़ नहीं कहाँ से कनेक्टेड है? क़यामत को झुटलाने से। हरगिज़ नहीं, क़यामत आ कर रहेगी, इसको ना झुटलाओ, जो तुम कह रहे हो क़यामत नहीं आएगी, हरगिज़ ऐसा नहीं है, क़यामत आएगी। ये इसलिए जो तुम क़यामत को झुटला रहे हो इसलिए है कि तुम जल्दी मिलने वाली को पसंद करते हो, अल आजिला, जल्दी मिलने वाली यानी जो तुम्हें ये दुनिया नज़र आ रही है, आखिरत तो तुम्हें आंखों से नज़र नहीं आ रही, अपने पांच हवास से, 5 senses से तो तुम्हें आखिरत नज़र नहीं आ रही, तुम्हें ये दुनिया की लज्जतें दिखाई देती हैं, ये तुम इसको पसंद करते हो, इसकी तरफ जाते हो, इसलिए इसको तरजीह देते हो, ये इसलिए, ये क़यामत का झुटलाना इसलिए कि तुम दुनिया को पसंद करते हो, और जब तुम्हें दुनिया में आखिरत का तसव्वुर रुकावट लगता है तो तुम उसे झुटलाने की कोशिश करते हो। 21, और आखिरत को छोड़ देते हो, दुनिया के पीछे दौड़ते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। अब हम आयत नंबर 22 में अल्लाह उस आखिरत का मंजर बता रहे हैं, वो आखिरत जब आएगी तो क्या सूरत हाल होगी, बहुत से चेहरे उस दिन शादाब होंगे, चमक रहे होंगे, जैसे ताज़ा सब्जा निकलता है, ताज़ा फूल खिलते हैं, तो एक जो ताजगी का एहसास होता है उनको देख कर, اسی طرح کچھ چہرے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن شاداب ہوں گے. 23 وہ اپنے رب کی رحمت کو دیکھتے ہوں گے. یہ ناظرہ کا لفظ اسی سے لفظ انتظار بھی نکلا ہے, کیونکہ قرآن مجید نے خود بیان فرمایا ہے کہ نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. تو یہاں پر الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو رب کی طرف تو دیکھ رہے ہوں گے سے کیا مراد ہے؟ وہ جو محکم آیت ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے, چونکہ عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بجائے خود چیز کو دیکھنے کے, خود کسی اس چیز کو دیکھنے کے اس کے آثار یا اس کے نتائج کی طرف نگاہ رکھنا, اس کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم اس محکم آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ترجمہ کریں گے کہ اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے, اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. 24 اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے, ان کی شکلیں بگڑ گئی ہوں گی, خوف, پچھتاوا, حسرت, بگڑے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ آیت نمبر 25 گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. یہ لفظ آیا فاقرہ, فاقرہ فقرہ سے ہے, اور فقرہ کہتے ہیں جو ہماری کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے مہرے کو, ایک مہرے کو فقرہ کہتے ہیں, اور ساروں کو مثلا جمع ہے فقرات. فاقرہ ایسی چیز کے جو انسان کی کمر کے مہروں کو توڑ کر رکھ دے. یہ ایک تعبیر ہے اس عذاب کی شدت بتانے کے لیے. دنیا میں بھی مثال کے طور پر اگر کسی کا بہت بڑی کسی پر مصیبت آ جائے, کسی کا مثلا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے, تو وہ کیا کہتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے. کمر اس کی ٹھیک ہوتی ہے لیکن ایسی مصیبت ہے گویا میری کمر ٹوٹ چکی ہے. اور یہاں پہ قرآن اس عذاب کی شدت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ چہرے کیوں بگڑے ہوئے ہوں گے, کہ ان کو اب گمان ہو چکا ہوگا, کہ گمان سے مراد یہ وہ گمان ہے جو یقین ہے, اس لیے کہ قیامت کے دن جب نکلیں گے تو سارے شکوک و شبہات دور ہو چکے ہوں گے, اور ابھی چونکہ ان کا حساب کتاب ہونا ہے لیکن ان کو اب یہ پتہ چل جائے گا جو پیچھے زندگی ہم نے گزاری ہیں اب ہمارے ساتھ وہ معاملہ انجام دیا جائے گا جو ہماری کمر کو توڑ کر رکھ دے گا. آیت نمبر 26 اس سے پہلے تو اس قیامت کا تذکرہ تھا جو فائنل حساب کتاب کا دن ہے, لیکن ایک چھوٹی قیامت بھی ہوتی ہے کہ جس سے انسان اسی دنیا میں اس کا سامنا کرتا ہے, اور وہ ہے اس کی موت کا وقت. یہ جو اگلی آیات ہے یہ وہ اس وقت کا بیان کر رہی ہے کہ جب ایک انسان بستر مرگ پر پڑا ہے اور گویا کہ ڈاکٹروں نے, علاج کرنے والوں نے جواب دے دیا ہے کہ یہ اب نہیں بچ سکتا, اور اس کے رشتہ دار, اس کی اولاد, اس کی بیوی یا مثلا اگر عورت ہے تو اس کا شوہر, دیگر دوست اس کے آس پاس کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس کی جان کو نکلتے ہوئے, اور اس مرنے والے کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب یہ دنیا سے میری جدائی کا وقت ہے, رشتہ داروں سے, دوستوں سے, اولاد سے, بیوی سے, وہ تمام چیزیں جن سے دل لگایا ہوا تھا, اور یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے, یہ کیفیت کہ جو اللہ کا نافرمان تھا, دنیا پرست تھا, اس کی جب جان نکل رہی ہوتی ہے, اس منظر کو قرآن مجید کن الفاظ میں بیان فرماتا ہے. آیت نمبر 26 ہرگز نہیں, یعنی تم نے اس دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ, تمہیں یہاں سے جانا ہے. جب جان ہنسلی تک, یہ ہنسلی کی ہڈی کے گویا کہ جہاں سے انسان کی سانس باہر نکلتی ہے اور جہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جان ہماری وہاں سے باہر نکلتی ہے, جب جان حلق تک پہنچ جائے گی, یعنی جان نکلنے ہی والی ہے. 27 اور کہا جائے گا کون ہے کہ اس کا علاج کر دے, کوئی معجزہ دکھا دے اور اس کو بچا لے. یعنی اس قسم کی آوازیں آتی ہیں جب مرنے والے کو بھی پتہ لگ گیا ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, اور اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اب سامنے والوں سے بات بھی نہیں کر سکتا, اور جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جان نکل رہی ہے, تو اس قسم کی باتیں سننے میں آ جاتی ہیں. جو بہت ہی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں, تڑپ کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو اس وقت بچا لے, کوئی معجزہ ہو جائے, کوئی جادو ہو جائے, کچھ ہو جائے कि ये मरने वाला वापस आ जाए, और कहा जाएगा कौन है इलाज करने वाला, कोई है जो इसका इलाज कर ले। 28, और वो समझ जाएगा कि उसकी जुदाई का लम्हा आ गया है, यानी वो मरने वाले पर भी ये बात वाजे हो जाएगी। 29, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। जब इंसान मरने लगता है तो अपनी बाजों का तकलीफ में अपनी टांगों को एक दूसरे के साथ रगड़ता है, पिंडली से पिंडली का लिपट जाना, ये माना हो सकता है। या ये माना हो सकता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी टांगें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, या बाद में बांध कर जोड़ दी जाती हैं, या कफन में लपेट दी जाती हैं। जिस तरह से भी इसका तसव्वुर करें, इस आयत के अंदर वो शामिल है कि वो जो हरकतें थी और वो जो छलांगें थी और वो जो नाफरमानियां थी, अब वो इतनी बेबसी की सूरत है कि अपनी टांगों को, पिंडलियों को भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता, और उसको अब अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। और जब ये पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी, 30, तो वो तेरे रब की तरफ हांके जाने का दिन होगा, यानी उस दिन तेरे रब ही की तरफ तुझे वापस जाना है, अब तू कहीं और नहीं जा सकता, इस दुनिया से तेरी जुदाई हो चुकी। ये कौन शख्स है, आयत नंबर 31 में बताया जा रहा है। तो इसने न तो तस्दीक की और न नमाज पढ़ी, यानी अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आया था इसने उसकी तस्दीक नहीं की, यानी झुटलाता रहा उसको। तस्दीक करना यानी कहना कि ये हक है, और उस तस्दीक का एक बहुत बड़ी अलामत जिक्र की, और वो क्या है जो तस्दीक करता है, उसकी बहुत बड़ी अलामत क्या है, अल्लाह की नमाज पढ़ना, इबादत करना। तो न इसने तस्दीक की और न ही नमाज पढ़ी, कि जो गोया के सबूत है कि मैंने इस आईन जिसका नाम इस्लाम है, ये कुरान, इसको मैंने सच्चा तस्लीम कर लिया, और इसके बदले में क्या किया, आयत नंबर 32, लेकिन जिसका माना उर्दू में करेंगे बल्कि झुटलाया और पुष्ट की, रूगर्दानी की, न माना इसको। 33, और फिर उसके बाद क्या करता था, जब उसको पैगाम सुनाया जाता था नहीं मानता था और झुटला देता था और पुष्ट कर लेता था, फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चल पड़ता था। घर वाले भी मुराद हो सकते हैं, अपने हम महफिल, अपने यार दोस्त भी मुराद हो सकते हैं, कि अकड़ के उनके पास जाता था और जाके कहता था कि आज मैं, वो जो अपने आप को रसूल कहता है, मैं उसको झुटला के आया, उसने मुझे ये बात की, मैंने नहीं मानी, और अपनी उल्टी सीधी बातें कर कर दलायल दिया करता था। ये इसकी कैफियत थी, हक को ये नहीं मानता था। अब इससे कहा जा रहा है आयत नंबर 34 में, तेरे लिए तबाही है तो फिर तबाही है, यानी तेरे लिए तबाही ही तबाही है। 35, फिर दोबारा तकरार किया जा रहा है, तेरे लिए तबाही पर तबाही है, तेरी मोहलत खत्म हो गई, तूने अपना सरमाया जाया कर दिया, तूने अपनी सलाहियतें जाया कर दी, दुनिया परस्ती में, दुनिया के मजे लूटने में गुजार दी, अब तबाही पर तबाही तेरा इंतजार कर रही है, फिर तबाही पर तबाही तेरा इंतजार कर रही है। ये जो ताकीदें हैं इस अजाब के बारे में, ये अल्लाह की रहमत है, याद रखिए, इसको इस निगाह से देखें, खुदावंद आलम इतनी शिद्दत से खबरदार करना चाहता है कि जिसके अंदर गुंजाइश है वो सोचे तो सही कि मसलन मैं जिस अजाब को नहीं मान रहा और उस दिन के लिए तैयारी नहीं कर रहा, अगर ये फर्ज करे कि मुझे अगर ये बर्दाश्त करना पड़ गया तो जब वापसी का रास्ता भी नहीं होगा और कोई बचाने वाला भी नहीं होगा अल्लाह से, तो मेरा क्या हाल होगा, डर जाए शायद और अल्लाह की बारगाह में लौट आए। आयत नंबर 36 से लेकर आखिर तक, फिर कुछ सवालों के जरिए, ये सवाल पूछने के लिए नहीं है बल्कि कुछ बताने के लिए। पहला सवाल 36 नंबर आयत, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा। यहां पे लफ्ज आया है सुदा, सुदा उन ऊंटों को अरब कहते थे कि जिनको आजाद चरने के लिए छोड़ दिया जाए और कोई उनको हांकने वाला, कंट्रोल करने वाला, रोकने वाला ना हो, जिधर उनका जी चाहे चरते फिर। वो लफ्ज लाया कुरान ने कि क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा, जो मर्जी दुनिया में करता रहे, उसे कोई पूछा नहीं। ऐसा बातिल निज़ाम तुम समझते हो अल्लाह ने पैदा किया। उसके बाद इंसान की खिलकत के मराहिल की तरफ, जो कुरान में मुतअद्दिद मरतबा अल्लाह ने, चूँकि इसको इंसान अच्छी तरह सोच सकता है कि किन कितने पेचीदा मराहिल से गुजर कर तू एक मामूली कतरे से इंसान बना है, तो ये जो निज़ाम बनाया गया ये बेहुदा है। अब तुझसे पूछेगा ही कोई नहीं कि तूने कैसी जिंदगी गुजारी और कैसी नहीं गुजारी। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? 37, क्या वो टपकाया जाने वाला मनी का एक नुतफा नहीं था? अपनी औकात इंसान को याद कराई जा रही कि उस एक मामूली कतरे से तुझे हमने इतने मराहिल से गुजार कर इंसान बना दिया, और तू समझता है कि हम, जिसने तुझे ये सारे मराहिल से गुजारा है, जिसने ये निज़ाम बनाया है, अब वो तुझे पूछेगा भी नहीं कि तूने कैसी ज़िंदगी गुजारी। वो जो शुरू में कसम खाई थी, तेरे अंदर की आवाज़ भी उसी ने बनाई है जो तुझे मलामत करती है, और ये आवाज़ गवाही दे रही है कि बनाने वाला अच्छाई और बुराई में फर्क देखना चाहता है तेरी जिंदगी में। 38, फिर लोथड़ा बना, फिर उसे खल्क किया, बनाया और तो उसे संवारा, फसव्वा, यानी जो चीज जैसी जितनी मिकदार में होनी चाहिए थी वैसी बना दी, बनाया भी उसने और संवारा भी इंसान को। 39, फिर उससे जौजैन बनाए, जौजैन यानी नर और मादा, मर्द और औरत, जौजैन कौन से, यानी नर और मादा, फिर उससे मर्द और औरत का जोड़ा बनाया। आखिरी आयत नंबर 40, क्या उस जात के पास ये कुदरत नहीं है कि वो मरने वालों को जिंदा कर दे? जिसने ये पहली दफा सब कुछ किया है, कितनी अहमकाना बात है कि कोई ये कहे कि दूसरी मर्तबा किस तरह ये काम होगा। ना, तुम्हारा पहली मर्तबा का वजूद तुम्हें बता रहा है कि उसको ढूंढो जिसने पहली मर्तबा ये किया है, क्योंकि जिसने पहली मर्तबा किया है दूसरी मर्तबा तो वो बड़े आराम से कर लेगा। सूरह कयामत यहाँ पर तमाम होती है। सूरतुल इंसान, जिसे सूरतुल दहर भी कहते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में बयान की जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।